बाबा के घर में बहुत अच्छी मौसम में तपस्या करने आए हैं। चारों ओर प्रकृति की सुंदर हरियाली, उसको देखकर मन भी खुशहाल हो जाता है और बाबा की याद भी अच्छी रीति आती है। प्रकृति की सुंदरता हम आत्माओं की सुंदरता और बाबा की बरसात, तीनों सतयुग में जैसे सत्य स्थिति में होंगे, ऐसे संगम युग में भी हम अपनी तपस्या करना, माना अपनी सतो प्रधान स्टेज में रहना। हमारी तपस्या क्या है, क्या तपस्या की सभी ने? ब्रह्मा बाप समान बनना, ये हमारा लक्ष्य है। उसके लिए तप कौन सा करना है? तो पहला तप है आत्मभिमानी बनना, निरंतर अपने आप को देह भान से डिटैच करते रहो। मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग हूं, क्योंकि देह में रहते रहते देह और समय के संसर्ग में, क्योंकि अभ्यास तो रहा नहीं सतयुग त्रेता में, तो भूल गए अपने आप को, आत्मा विस्मृत हो गए, देहभान में आ गए, दुनियावी बन गए, सांसारिक बन गए। यही एक भूल हुई ना हमारी सबसे पहले, इसलिए अभी हमें बार बार खुद को जगाना है कि मैं आत्मा हूं और शरीर से अलग। भल मैं शरीर में रहती हूं, हर क्षण शरीर से कर्म करती हूं, लेकिन मैं शक्ति हूं और शरीर तो तत्व है। शरीर किससे बना है? पांच तत्व से बना है, तो शरीर तो तत्व है। मैं आत्मा शक्ति हूं, चैतन्य हूं। तो ये खुद खुद को बार बार रियलाइज कराते रहना है। ये आत्माभिमानी ताकि साधना नंबर वन साधना है। आत्मा को द्वापर युग से फिर भी भगवान को याद करने का अभ्यास है, पर कौन सा अभ्यास नहीं है? खुद को आत्मा समझने का। इसलिए हमें अच्छा अभ्यास करना है। आत्मभान की साधना कमजोर रह जाएगी तो आत्मा पूर्ण शुद्ध नहीं बनेगी। इसलिए ये साधना बहुत पक्की करनी है। बाबा कहते हैं ना, तपस्या किसको कहते हैं? हम तो वैसे भी बाबा को याद करते रहते हैं, अब तो हमारा योग बाबा से लग ही गया है, दुनिया से तो लंगर उठ चुका है, उठ चुका है ना सबका, सबका, कुमारों का भी, हाँ सबका उठ चुका है। कुमारियां आई है हाथ ऊपर करो, उठा है लंगर, इस दुनिया से उठ गया ना। हाँ तो योग बाबा से लगेगा, इसलिए ये साधना माना लक्ष्य पूर्वक और दृढ़ता से अभ्यास करना, इसको कहते हैं तपस्या। याद बाबा को ही करना है, याद आत्मचिंतन का ही अभ्यास करना है, परंतु लक्ष्य पूर्वक और पूरी दृढ़ता से प्रैक्टिस करना। सत्य ज्ञान तो बाबा ने दे दिया, मिल गया ना सबको, अब कुछ बाकी है नहीं, तब तो भगवान ने अपना पार्ट पूरा कर दिया। बाबा ने अपना पार्ट क्यों संपन्न कर दिया, उनको जो कहना था वो कह दिया। तो ज्ञान तो बाबा हमें देते हैं, सत्य ज्ञान हमें मिला है, स्वयं भगवान मिला है, मिल गया है ना सबको, पक्का निश्चय है। फिर कोई बनावटी बाबा निकलेगा तो बुद्धि तो नहीं बदल जाएगी ना। खुद के विवेक से बाबा को परखो कि बाबा जैसा सत्य ज्ञान कोई दे नहीं सकता। कितना बाबा ने हमें साकार मुरलियों के माध्यम से मूल सत्य ज्ञान कितना विस्तार से और कितनी गहराई से नए नए तरीके से रोज बाबा ने समझाया, इतना कौन समझाएगा बताओ। हम भी एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार समझा के थक जाते हैं कि भाई अब मैंने समझाऊंगी, और बाबा 33 वर्ष बाबा ने साकार मुरलियों के माध्यम से मूल सत्य ज्ञान की पूरी गहराई हमें बताई और व्यावहारिक जीवन की हर मैनर्स हमें सिखाए, उठना, बैठना, चलना, देखना, बोलना, सोचना, खाना पीना कैसे, वो मैनर्स बाबा ने सिखाए कि नहीं सिखाए बोलो। कितनी बात बाबा मुरली में सिखाते, हमें अब कुछ ढूंढना नहीं है, हमें सब कुछ मिल गया है, हमें जीवन में लाना है, हमें जीवन में लाना है, अब ज्ञान जीना है। कई सोचते हैं ना, बाबा भी नहीं आते हैं, दादियां भी नहीं हैं, तो क्या करें मधुबन जाके, जहां भी जाओ ज्ञान को अब जीना है, आचरण में बस। अंत तक जो पक्का सच्चा ब्राह्मण रहेगा वो सतयुग का देवता बनेगा। इसलिए अंत तक हमारा ब्राह्मणत्व पक्का रहना चाहिए। इसलिए आत्मभिमानीता की तपस्या पक्की चाहिए। दूसरी तपस्या है एक बाबा दूसरा न कोई। देखो किस किस दूसरों को आपने अपना बनाया है। भट्टी में आते हो ना, समय निकाल कर आते हो। क्यों भट्टी में आप सबको बुलाते हैं? क्योंकि वहां तो आपको टाइम नहीं है, क्लास के बाद भागने लगते हो। हमें जाना पड़ेगा दीदी, हम नहीं रुक सकते हैं, नाश्ता बनाना है, बच्चों को भेजना है, ऑफिस जाना है, तो दौड़ते हैं, सब भागते हैं क्लास के बाद। तो बाबा ने भट्टी के प्रोग्राम शुरू से निकाले कि मधुबन बेहद घर में आओ, आराम से रह, तैयार भोजन मिलेगा। माताओं को तो रोज सोचना पड़ता है आज क्या बनाए है। वो यहां मुक्त है, नहीं तो हमारी अन्न शुद्धि की धारणा, कहीं भी जाओ खुद खाना बनाना होता है। एक बाबा का पियर घर ऐसा है, तैयार थाली मिलती है। यहां नौकरी पर भी नहीं जाना है, तो ये जो टाइम है वो खुद को दो। देखो लौकिक से तो हम निकल गए, क्योंकि हमें बाबा ने ज्ञान दिया तो हमारी अंधश्रद्धा चली गई, अपवित्रता चली गई, हमारी बहुत शुद्ध जीवन बन गई। तो लौकिक से तो हम न्यारे हो गए, पर लौकिक में आकर किसी को अपना तो नहीं बनाया है ना। देखो अपने आप में साइलेंस में बैठकर सच्चाई से देखो। संगम युग भगवान से प्यार करने का युग है, और कोई आत्मा से नहीं, और आत्माओं से नहीं, भगवान से प्यार करने का युग है। आत्माओं के साथ तो पवित्रता और रूहानियत से चलना है, पर दिल का सच्चा प्यार एक बाबा से, हर बात में, हर समय, हर स्थान मुझे बाबा याद आवे, तब कहेंगे सच्चा एक बाबा दूसरा न कोई। अगर और बातों के कारण व्यक्ति की याद आती है तो सच्चा नहीं कहे। इसलिए चलो भाई, भक्ति में ज्ञान नहीं थे तो भटकते थे, अनेकों को याद करते थे। अब क्यों बुद्धि भटकती है? अपने आप से पक्का सिखाओ खुद को, अब क्यों मेरा योग नहीं लगता है? अब तो मुझे बाबा मिल गए, सत्य मिल गया, अब और किसी से कोई इच्छा नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान हमें सर्व संबंधों से संपूर्ण प्राप्ति करा रहा है, तो अब हमारी नजर और बुद्धि और किसी में डूबनी नहीं चाहिए। तो कहेंगे एक बाबा ये पक्का व्रत है। हमारी तीसरी तपस्या है कि हमें शरीर से यहां रहना है, परंतु मन और बुद्धि से सदा ऊपर असली घर में रहना है। अब हमें वापस घर जाना है, जहां जाना है वहां बुद्धि योग लगाना है। जहां जाना है वहां बुद्धि योग लगाना है। कहीं जाने का प्रोग्राम होता है तो बुद्धि हमारी वहां चली जाती है ना, सब कुछ समेटने लगेंगे कि आज तो मुझे जाना है, आज तो मुझे जाना है। कल आप आए हैं, तीन दिन के बाद फिर पांचवे दिन आपको जाना है वापस, तो सबका योग कहाँ लग जाएगा? हाँ लग जाएगा ना, यहां से बुद्धि उठेगी और भाई जहां जाना है वहां बुद्धि लग जाएगी। जिसके साथ जाना है उसके साथ बुद्धि लग जाती, बाबा को याद कर। तो देखो बाबा ने हम सबको फाइनल प्रोग्राम दे दिया है ना, फाइनल प्रोग्राम सबको क्या मिला है, क्या मिला है? हाँ? कि वापस घर जाना है और नई दुनिया में आना है, ये हम सबका फाइनल प्रोग्राम है। तो अब हमारा बुद्धि योग कहाँ लगना चाहिए? अपना शांति धाम और सुख धाम। और किसके साथ जाना है? बाप दादा के साथ जाना है। आप लोग पूछते हो ना, दीदी हमारे को किसके साथ जाना है, कौन से डिब्बे में बैठना है, हमारे साथ कौन होगा? तो हमारे साथ कौन होगा? बाबा होंगे। तो अब हमारी बुद्धि बताओ किसके साथ लगनी चाहिए? बाबा के साथ, है ना? तो ये भी एक तपस्या है कि इस दुनिया में रहते हुए अपना रोल प्ले करते हुए, नाते निभाते हुए, हमें निरंतर अंदर अंदर मन में क्या याद रहे? बाबा के साथ वापस घर जाना है। तो वो ऐसे याद नहीं रहेगा, आपको लगन लगानी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। ये एक तपस्या है कि इस दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि यहां न फंस जाए, हमारी बुद्धि सदा न्यारी ऊपर उठी रहे। वापस घर जाना है तो सोचो कैसे जाना है, क्या तैयारी करनी है। वापस घर जाना है तो कैसे जाना है बताओ? हैं? नहीं वो तो है, पर तैयारी भी तो करनी होगी ना। और शरीरी बनने का अभ्यास चाहिए, क्योंकि शरीर सहित नहीं जाना है ना, इसलिए रोज और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। पवित्र आए थे, पवित्र बनकर वापस जाना है। दुनिया तो कहती है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, पर हम तो क्या कहते हैं? भरतू हाथ जाना है। आज का विषय है ना, ऊंची तकदीर, ऊंचा भाग्य। हमें तो यहां सब कुछ छोड़ के नहीं जाना है, हमें तो सब कुछ सफल करके जाना है। जीते जी बाबा की बैंक में जमा कराना है और अनेक गुना होकर सतयुग में लेना है। तो हम इतना जमा करेंगे तो हमें मिलेगा ना, इसलिए संगम युग का समय है। श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय, भाग्य वास्तव में क्या है, तकदीर वास्तव में क्या है, हमारे किए हुए कर्मों का रिजल्ट है, फल है, जो संचित फाइनल माइनस प्लस होके जो हिसाब आता है वो भाग्य है। नसीब कोई और नहीं बनाता है। ज्ञान नहीं था तो हर कोई नसीब को कुटते थे ना, मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा है। पता नहीं कितनी बार एक दो को कहते होंगे, पता नहीं मेरे नसीब में ही ये लिखे होंगे, वो लिखे होंगे, वही मुझे मिले हैं। तो नसीब को ही कुटते रहते थे, अपने नसीब से कोई संतुष्ट नहीं थे। पर नसीब हमारे कर्मों का ही हिसाब है, ये कोई नहीं सोचता है। लोग सोचते हैं पता नहीं नसीब कोई और बनाने वाला है, नसीब और कोई नहीं बनाता है, हमें खुद खुद के कर्मों से बनाना है। और संगम युग में हमें ये मौका है, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता भगवान और ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा को कहते हैं ना भाग्य विधाता, भृगु ऋषि उससे कहते हैं कि वो भाग्य लिखते हैं। तो बाबा ने तो हमें नंबर वन का भाग्य बनाने का मार्ग बताया है। श्री लक्ष्मी नारायण, बाबा कहते हैं ना नंबर वन विश्व महाराजा और विश्व महारानी, वो बनने का बाबा ने हमें प्रशिक्षण दिया है। तो सबका क्या विचार है, क्या बनना है, कौन सा लक्ष्य लेके चल रहे हैं? बाबा तो पढ़ाई वो पढ़ा रहे हैं कि आपको लक्ष्मी नारायण जैसा पद प्रतिष्ठा सत्ता समृद्धि सौंदर्य स्वास्थ्य सब कुछ, नंबर वन लक्ष्मी नारायण जैसा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा खुद ऐसे बने। तो वही बातें वो मुरली में भी हमें बताते हैं, अव्यक्त मुरलियां तो बाबा ने अपनी संपूर्णता की स्टेज से चलाई है, इसलिए संपूर्ण बनने की हर बात अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने बताई। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि सच्चा मानव बने तो भी बहुत है, तो सच्चा मानव बनना माना ब्राह्मण बनना है, पवित्र योगी जीवन बनाना वो सच्चा मनुष्य है। और मनुष्य सच्चे मानव से संपूर्ण मानव बनना माना देवता बनना। देवता में भी उच्च राजाई पद के लिए हम पुरुषार्थी। तो बाबा तो इतना ऊंचा भाग्य बनाने का कदम कदम का ज्ञान बाबा हमें दे रहा है, इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं कि जो हो गया सो ड्रामा, फुल स्टॉप लगा। बहुत पाप किए, भूलें की, अवज्ञाएं की, और उसी का फल दुख शांति रोग शोक जीवन में हम भोगते हैं। पर बाबा कहते हैं जो हो गया सो ड्रामा, फुल पॉइंट, अब गफलत नहीं होनी चाहिए। मुख्य बात है ये कि अब ब्राह्मण बनकर गफलत में कोई विकर्म नहीं करने हैं, कोई पाप कर्म नहीं करने हैं। अब अटेंशन रखना है, क्योंकि अब अगर गफलत करेंगे, जैसे सीजन में गफलत से कोई किसान हल्की क्वालिटी का बीज बो दे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? अनेक गुना हल्की क्वालिटी का फल मिलेगा। प्रकृति का तो गुण है, आपको कण का मण देंगे। देखो प्रकृति में भी शक्ति है, कण बीज बोते हैं और मण बंद अनाज हम प्राप्त करते हैं। तो क्या भगवान हमें एक का पदम गुणा नहीं दे सकता है? निश्चय है बाबा की इस बात में? कहीं सोचते हैं कि ऐसे कैसे मिलेगा? नहीं, भगवान प्रकृति में शक्ति है तो भगवान में शक्ति नहीं है। पहले के राजाओं के इतिहास में पढ़ते हो ना कि राजा खुश हो जाता था तो कितना दे देता था, इतनी मोहरे इतने गांव की कमाई तुमको मिलेगी। तो भगवान क्या नहीं दे सकता है? वो एक का पदम गुणा देगा। संगम युग पूरा हुआ, ये वरदान पूरा हो जाएगा। इसलिए संगम के पूरे होने से पहले मुझे संपूर्ण बन जाना है। सावधान रहना हमारा काम है। कल भी बाबा ने नहीं कहा कि सावधान रहो, जब तक जिएंगे पवित्रता में जिएंगे। अब कोई विकर्म पाप कर्म का बीज गफलत से अटेंशन नहीं रखा और डाला तो अनेक गुना गलत फल खाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ना, एक का 100 गुना दंड मिलेगा। तो ये खुद को अटेंशन देना है कि ये संगम का समय श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने का समय, एक का पदम गुणा फल पाने की ये सीजन है। इसलिए गफलत से भी कोई हल्का नीचा काम नहीं कर। इसलिए सबके साथ न्यारा रहना है, एक दो के संग में प्रभाव में आ जाते हैं तो हम गलत काम कर देते हैं। गलत कर्म में किसी का साथी नहीं बनना है, हमें डिससर्विस करने में साथी नहीं बनना। पर एक दो का खाते हैं, सौगात लेते हैं तो आत्मा दबती है। समझा? ये गुह्य राज है, इसलिए आत्माओं से नहीं लेना है। बाबा के घर से जो सौगात मिलती है हम प्यार से लें, आत्माओं से नहीं लेना है, क्योंकि वो आत्मा को बांधेगी, दबाएगी, ऋण चढ़ता है। कहते हैं महाभारत की कहानी में क्या बताते हैं, ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि कौरवों का खाते थे, इसलिए क्यों बाबा ने अन्न शुद्धि का नियम कराया, बहुत गहरी बात है। इस दुनिया में कुछ भी मफत नहीं मिलता है, हिसाब बनता है। आप सोचेंगे मैंने थोड़ी मांगा है, वो दे रहे हैं ना, पर भाई नहीं चाहिए। हमारे में ऋण चुकाने की ताकत नहीं है तो हमें नहीं लेना है। जितना न्यारे रहेंगे आप किसी के प्रभाव में संग में आकर गलत नहीं करेंगे, न्यारा रहो। हमें सब अच्छे हैं, अच्छाई सीखनी है, पर सब अच्छे हैं तब जब वो बाबा के बने रहे हैं। बाबा ना मिलता तो हम कोई अच्छे नहीं। बाबा मिले तो सद्बुद्धि मिली, सद्मति मिली, तो सत्कर्म अब होने लगे, तो भाग्य उदय हो गया। इसलिए हम गाते हैं ना, तकदीर जगाकर आए हैं। संगम युग में आना भी भाग्य की बात है ना। देखो दुनिया ये सत्य नहीं जानती है कि भगवान आए हुए, उनको नहीं पता है कौन आया है, वो क्या कह रहा, तो वो गफलत में है। पर हमें तो पता है ना कौन आया है, कौन हमें रोज पढ़ा रहा है, वो हमें क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिकल आचरण में आना चाहिए, वरना क्या समझते। हम रोज बाबा का ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, उसकी निशानी है हम गफलत में नहीं रहेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। न मन को वेस्ट करना है, न तन को वेस्ट करना है। बाबा कहते हैं ना, वे स्कूल में पढ़ते हैं, मीन्स भाग्य बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है, भाग्य है ना, हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, तो ये भाग्य है भाई। ढंग से पढ़ेंगे तो बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास, लाखों की कमाई करने वाले बनेंगे। नहीं तो मुरली में कितनी बार बाबा कहता है, वही एक एडवोकेट होता है फटा हुआ कोट पहनता है, एक एडवोकेट है जो लाखों की कमाई करता है। क्यों करता है? भाग्य अच्छा कैसे बना? पढ़ाई अच्छी की। तो संगम युग में प्रैक्टिकल करना है। संगम युग की विशेषता ही यह है, प्रैक्टिकल करना, सिर्फ बातें नहीं करनी है, प्रैक्टिकल चाहिए, आचरण चाहिए। अभी अच्छी पढ़ाई करेंगे हम, अच्छा जीवन बनाएंगे, अंडरस्टूड है हमारा भाग्य अच्छा बनेगा ही बनेगा, हमें कोई ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, जहां तहां हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान नहीं था तो हाथ दिखाते रहते थे कि भी देखो भाई मेरे नसीब में क्या लिखा है। अब तो हमें पहले से ही पता है, हम खुद ही श्रेष्ठ कर्म की कलम से भाग्य की रेखा को खींच रहे। भगवान ने हरेक को श्रेष्ठ कर्म की कलम दे दी, ज्ञान दिया है, समझ दी है, अभी करना है, ये समय को वरदान है, अभी करना है। संगम पूरा हो गया, सब वरदान पूरे हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं समय के पहले, उसको कहा था ना वो महाभारत में गीता में कि मेरे पहले तुम उतर जाओ रथ से, नहीं तो देखा था ना उसने। तो बाबा भी हमें कहते हैं समय के पहले बन जाओ, उसके बाद तो कुछ भी नहीं। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, संकल्प वेस्ट नहीं करना है। ये समय है भगवान के साथ रहना, भगवान को जीवन का सारथी बनाना, उनके मार्गदर्शन पर चलना। घर में रहते भी श्रीमत पर हम चल सकते हैं। बहुत बाबा के अनन्य महारथी बच्चे हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत महानता से चल रहे। तो हरेक को ये लक्ष्य रखना, इसमें पैसे की बात नहीं है। जो कुछ भी स्थूल और सूक्ष्म इस अंतिम जन्म में मेरे पास है, उसका मुझे सदुपयोग करना है, उसको ज्ञान से परफेक्ट बनाना है और विश्व कल्याण के कार्य में सफल करना है, लगाना है। तन की शक्ति, एक दो को नहीं देखो, जिसके पास जो है वो पुरुषार्थ और सेवा में लगाओ। धन है तो धन लगाएंगे, मेरे पास धन नहीं है मैं तन लगाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं तन से यज्ञ सेवा दिल से करूंगी। आज देखो यज्ञ में रहने का मौका किसको मिला है, किसको मिला है, तन से सेवा करने वालों को। आज हम निवासियों के बाद सबसे ज्यादा मधुबन में कौन रहते, सेवाधारी रहते। बाकी सबको कहा जाता है भाई जाओ, आपको टाइम से आना है टाइम से जाना है, पर तन की हड्डी लगाते हैं तो वो सेवाधारी यहां दो दो मास भी रहते हैं, चार चार मास भी रहते हैं। एक दो को नहीं देखना है, मेरे पास क्या है वो मुझे सफल करना है। धन है धन, बुद्धि है बुद्धि, गुण है गुण, कला है तो कला लगाओ, अपने संपर्क संबंध से सेवा कराएं। हर कोई तो ज्ञानी नहीं बनेगा, योगी नहीं बनेगा, परंतु हर कोई सहयोगी तो हर कोई को बना सकते हो ना। अपने बच्चे बहू बेटियां दामाद पूरे चाचा मामा काका जो भी हैं, चलो योगी तो कल पहले जो बने थे वो ही बनेंगे, सबको बाबा का संदेश दो। पर भगवान के कार्य में मददगार तो हम सबको बना सकते हैं, ये लगन रखो। औरों का भाग्य बनाएंगे तो आपका तो अपने आप बनता जाएगा। सबको बाबा के यज्ञ में भावना बिठाओ, भक्ति में भी बाबा कहते मंदिरों में खाली हाथ नहीं जाते थे, जानते थे ना भक्ति में भी कि भगवान के नाम जितना करेंगे हमें ही मिलेगा। भई हमारे खुद के पास तो लिमिटेड है ना, खुद का तो हम लगा ही रहे हैं, पर अपने संबंध संपर्क के भाई बहने बच्चे जो है सबको बाबा के कार्य में मददगार बने। एक माता थी विदेश में अमेरिका में, वो यही काम करती, सबको कहेगी नहीं बाबा के घर में भोग लगाओ, बाबा के घर में ये काम करो, मकान बनता है मदद करो। भगवान विश्व कल्याण का कार्य कर रहा है। यादगार में क्या है, भगवान गोवर्धन पर्वत उठाया, वो कौन सा गोवर्धन पर्वत, ये विश्व परिवर्तन का, कलयुग को हटाना और सतयुग लाना, ये बाबा का कार्य है। बाबा कर रहे हैं, बाबा ने ही तो यज्ञ स्थापन किया। आज इतने सेंटर खुलते गए खुलते गए खुलते गए, कितनों का कल्याण हो गया। और आज भी देखो बाबा अपना काम कर रहा है, हम क्या सेवा करते हैं। भगवान ने देखो अपनी बच्ची को राष्ट्रपति बना दिया ना, इसमें किसने सेवा की, ये बाबा की कमाल है। भगवान अपना काम कर रहा है, कैसे सारा परिवर्तन होगा वो नजारा अब दिख रहा है। इसलिए अभिमान से नहीं, मैपन नहीं, नम्र बन के सेवा करो, पूरी श्रद्धा और भावना से बाबा के कार्य में अपनी हड्डियां लगाओ, बुद्धि लगाओ, गुण लगाओ, कला लगाओ, जो है वो लगाओ, यही भाग्य बनाने का समय। कई भक्ति के बहुत गीत गाते हैं कि हम भक्ति में थे तो ये करते थे वो करते थे, ये व्रत करते थे उपवास करते थे कथा कराते थे, अब क्या करते हो, भगवान जब आया तब क्या कर रहे, ये इम्पोर्टेंट है ना। आप मुझे बार बार कहो कि बहन जी आप राजकोट में आना राजकोट में आना, निमंत्रण देते रहो, और मैं जब आऊं तब आप टाइम भी ना निकालो, मेरे साथ भी ना बैठो, ध्यान भी ना दो, तो मुझे लगेगा ना कि ये तो झूठे हैं। आओ आओ कहते थे पर जब आए तब तो कुछ किया नहीं। तो भगवान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भक्ति में तो रोज गाते थे कि आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, तुम्हारे बन जाएंगे, मेरा कोई नहीं रहेगा। अब बाबा आया है, अब क्या कर रहे हो, देखो हर एक अपने आप, अब बाबा के लिए कितना प्यार है, यज्ञ के लिए कितना प्यार है, देखो। आत्माओं को देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि मैं भी नंबरवार हूं, आप भी नंबरवार है, मेरे में भी कमियां हैं, आप में भी है, पर पता है ना यज्ञ किसका है, बाबा का है या कोई ब्रह्मा कुमारी का, भगवान का कार्य है। हम मदद किसको कर रहे हैं, बाबा को कर रहे हैं, कोई बहनों को नहीं कर रहे। इसलिए आत्माओं को नहीं देखो, संगम युग हमारी नजर हर बात में बाबा पर रहनी चाहिए। ये है एक कानिक गुना पानी, ज्ञान नहीं था तो जो टॉप पर लोग थे उनको हम देखते रहते थे, कितना भाग्य है बाबा, कितने धनवान हैं, कितनी कार है, कितने बंगले हैं, कितनी सुविधा है, हम दूसरों का देखते रहते थे, भाई ये बड़ा राजा बन गया, अभिनेता बन गया, राजनेता बन गया। तो हर आत्मा को इच्छा तो होती है ना कि हम भी ऐसे बने, तो जब बनने का मौका बाबा दे रहे हैं तब हम आगे पीछे क्यों देख रहे हैं। भक्ति में कहते हैं ना लक्ष्मी तिलक करने आवे तो क्या करना चाहिए, मुंह धोने नहीं जाना चाहिए, कहते हैं ना तिलक करा लेना चाहिए। तो ये बाबा आया है ना, हमारे भाग्य को ऊंचा उठाना, और हर रीति का भाग्य। भक्ति में तो देखो, धन से करेंगे तो मकान अच्छे मिलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे तो हेल्थ अच्छी मिलेगी, कॉलेज खोलेंगे तो आपको बुद्धि अच्छी मिलेगी, एक का एक ही मिलेगा। पर यहां तो संगम में जो कुछ हम करेंगे सब कुछ हमें मिलेगा रिटर्न में। निश्चय है कि नहीं है? हाँ, कि लगता है कि अभी मिलना चाहिए। बताओ मन में क्या है? कहीं सोचते हैं बाबा तो ज्ञान ही देते हैं, थोड़ा धन भी दे दे, जमीन भी दे दे, नौकरी भी दे, ऐसे तो कोई नहीं कहते हैं ना। दिव्य बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति। बुद्धि बिगड़ जाती है तो माँ बाप का, बाप दादा का कमाया हुआ करोड़ों भी व्यर्थ कर देते हैं, पता है ना। बुद्धि ठीक रहनी चाहिए, शुद्ध बुद्धि बाबा हमें देता है जिससे हम सब कुछ कर सकते। पर करना हमें है, पाना हमें है। आत्मा को भक्ति की आदत पड़ गई है, क्योंकि सन्यासियों ने, योगियों ने, ऋषि मुनियों ने अपनी साधना के बल से बीमारियां दूर की, इच्छाएं पूर्ति की, तो आदत पड़ गई है कि बाबा देवे बस, हम कुछ ना करें। पुरुषार्थ करना नहीं चाहते, पर नहीं, बाबा हमें ऐसे डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते। बाबा हमें अपने कर्म पर खड़ा करना चाहते, हमें कर्म के बल से अपनी जीवन की नैया को पार करना है। इसलिए धीरे धीरे नहीं, कहीं कहते हैं धीरे धीरे करेंगे, क्यों भाई? टाइम तो जा रहा है, संगम तो पूरा होने आया, धीरे धीरे कब करेंगे? एक बार बाबा ने कहा था कि कोई घर में आग लगे तो वो लोग कहेंगे क्या कि धीरे धीरे निकलते हैं? निकलेंगे ना, धीरे धीरे निकलेंगे, ऐसे कोई कहेगा? तब तो बूढ़ा बीमार हर कोई छलांग मार के बाहर। तो ये समय है जब हमें बाबा कहते मनसा से भी सेवा करो। कितनी दुखी आत्मा है, तन भी लगाओ, मन भी लगाओ, बुद्धि भी लगाओ। कोई विशेषता है, विशेषता है भोजन बनाने की, टोली बनाने की, डेकोरेशन करने की, माइक चलाने की, इलेक्ट्रिक का काम करने की, वो विशेषता लगाओ, परफेक्ट बन जाएंगे। ये अनुभव है जिन्हों को इतना थोड़ा ही आता था, पर बाबा के नाम पर सेवा में लगाया, लगाते लगाते होशियार बन गए। है ना सबका अनुभव? है कि नहीं? माताएं घर में 5-10 का खाना बनाती थी, आज यज्ञ में 500 का ब्रह्मा भोजन बना देती। परफेक्ट बाबा ने बना दी, शक्ति भर दी। अभिमान नहीं आना चाहिए बस। अगर अपनी गुण कला का अभिमान आ गया तो वो तो ऐसा हो गया जैसे अमृत में जहर की बूंद पड़ गई, वो गुण अवगुण हो जाएगा। मेरे को माइक चलाना आता है पर मुझे अभिमान आ गया कि मेरी तरह और कोई चला ही नहीं सकता है। समय पर कोई बात बनेगी तो मैं रुठ जाऊंगा, देखूंगा कि मैं देखता हूं अब कौन माइक चलाता है, मेरे सिवाय तो किसको आता नहीं। और ये हम सेवा से किनारे हो जाएंगे, बाबा का काम किसी के बिगैर रुकेगा नहीं। कोई ना कोई ज्ञानी नहीं तो अज्ञानी, योगी नहीं तो सहयोगी, कोई ना कोई मदद करने वाला आ ही जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं विशेषता भी प्रभु की देन है। बाबा ने सद्ज्ञान से सद्बुद्धि दी, सद्बुद्धि से सत्कर्म हम करते हैं, इसी से भाग्य बनता है, तकदीर बनती है। तो बनाने वाला कौन हुआ? बाबा ही हुआ ना। बाबा श्रीमत देते हैं। आज कंसल्टेंट की फी कितनी होती? सिर्फ कंसल्टेंसी उसकी कितनी फीस होती? तो बाबा हर बात का खुद सामने से हमें गाइडेंस दे दे, एडवाइस दे दे, कितनी बड़ी बात है भगवान की। वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वहां अगर कोई गलत गाइड कर दे तो बेचारा घूमता ही रहेगा, नुकसान हो जाएगा। तो सबका क्या लक्ष्य है? ऊंची तकदीर बनानी है या जो हो सकेगा वो करेंगे, ऐसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बाबा कहते हैं ना ऊंचा भाग्य बनाना है। पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं वो कहेंगे कि भाई जो नसीब में होगा वो मिलेगा। नहीं, अभी अभी पुरुषार्थ की बात, अभी नसीब की बात नहीं है। नसीब की बात सतयुग और त्रेता युग में है, और द्वापर युग में तो यादगार रस्म रिवाज की बात है। वहां न सत्य पुरुषार्थ है न भाग्य है। इसलिए लक्ष्य पक्का, ब्रह्मा बाबा की लगन देखते हो ना मुरली में, पूरा वर्षा लेना है, पूरा पावन बनना है, पूरा सतो प्रधान बनना, कितना बाबा का लक्ष्य है। इसलिए घर में रहो, सेंटर में रहो या मधुबन रहो, लगन पक्की, लक्ष्य ऊंचा, अथक बनकर पुरुषार्थ करना है। तभी हम अपनी ऊंची जीवन भी बनाएंगे संगम की, और हमारा भविष्य सतयुगी भाग्य भी ऊंचा बनेगा। बाबा ने कहा ना कि आज भी बाबा ने कहा ना क्यों ना लेवे, लास्ट महावाक्य मुरली का देखो आप, आज या कल याद नहीं है मुझे कि क्यों ना हम पूरा वर्षा लेवे, क्यों ना हम अटेंशन दे। बाबा ने कहा ना त्रेता माना भी दो कला कम, चमक दमक कम हो जाएगी, सतयुगी जैसा वैभव नहीं रहेगा ना, यूज हो गया, 8 जन्म यूज हो जाएगा, फिर द्वापर त्रेता में आएंगे तो क्या फायदा है। इसलिए बाबा तो कहते हैं फर्स्ट जन्म से वर्षा लेना। इसलिए खुद खुद को समझाओ कि मुझे क्या करना है। लक्ष्य नहीं होगा, बाबा कितना भी ज्ञान देगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान ने तो दे दिया, हमारा टाइम है करने का। अब तो लगन पक्की, बस धुन लग जाए, इस समय को मुझे सफल कर देना। ठीक है, पसंद है तो दो हाथ ऊपर करो कि हम, और बाबा को बताओ कि बाबा मुझे पूरा आपसे वर्षा लेना है, और आपके जैसा ही मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है। कोई बहाना नहीं, कोई कारण नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा, आप ताली बजाओ खुद के लिए। खड़े हो जाइए। स्वयं के लिए क्या लक्ष्य बनाएंगे, खुद की बात बस, बाबा को बताओ, मन ही मन बाबा को बताओ खुद के लिए मेरा लक्ष्य क्या है।